नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद को किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले देशों को बेनकाब करने का आह्वान किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए संपूर्णता अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस भगदड़ हादसे में सत्संग के 6 आयोजकों को गिरफ्तार किया। हादसे में 121 लोग मारे गए थे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का मुंबई आगमन पर जोरदार स्वागत। मरीन ड्राइव पर विजय परेड जारी। और विंबलडन में पुरुष डबल्स में यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी दूसरे दौर में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के किसी भी रूप को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों को बढ़ावा और संरक्षण देने वाले देशों को अलग थलग और बेनकाब करने का आह्वान किया। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री की ओर से विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में की।
We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. The SCO must never waver in its commitment. We cannot have double standards in this regard.
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के मूल लक्ष्यों में आतंकवाद से निपटने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पर काबू पाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले वित्त पोषण और भर्ती को रोका जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं में कट्टर पंथ के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैठक महामारी के प्रभाव, जारी संघर्षों, बढ़ते आतंकवाद, विश्वास की कमी और दुनिया भर में हॉटस्पॉट की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में हो रही है। बैठक का उद्देश्य इन घटनाक्रमों के परिणामों की गंभीरता कम करने का तरीका खोजना है। श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कहा कि उत्सर्जन में कमी लाने की प्रतिबद्धता की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने और एआई मिशन शुरू करने वाले देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार और मंगलवार को रूस की यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर श्री मोदी मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दोनों नेताओं का परस्पर हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी। श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मॉस्को और वियना में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कि इतना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से।
आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने।
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन हित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक रिपोर्ट।
कथित धन शोधन मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के छठे दिन हेमंत सोरेन ने झारखंड की कमान अपने हाथ में ले ली है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अकेले हेमंत सोरेन को राज्यपाल डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्री सोरेन ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि विकास के कार्यों को अब आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शीघ्र ही मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं कृष्ण कुमार लाल।
हाथरस भगदड़ मामले में दो महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दुर्घटना में 121 लोग मारे गए थे। पुलिस महानिरीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि सत्संग के ये आयोजक भगदड़ के बाद घटनास्थल से भाग गए थे। मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर 1,00,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया है। जल्द ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। पुलिस घटना में किसी साजिश की संभावना की भी जांच करेगी। श्री माथुर ने बताया कि प्राथमिकी में भोले बाबा का नाम नहीं है, क्योंकि इस आयोजन के लिए अनुमति उनके नाम पर नहीं ली गई थी। हालांकि जरूरत पड़ने पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। नीति आयोग ने आज 500 आकांक्षी ब्लॉकों और 112 आकांक्षी जिलों के 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी संपूर्णता अभियान शुरू किया। 3 महीने चलने वाले इस व्यापक अभियान में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सितंबर महीने तक चलने वाले इस अभियान में चयनित लोगों के प्रतिनिधियों के साथ जिला और ब्लॉक अधिकारी, ग्राम सभाओं, नुक्कड़ नाटक, आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनी, पोस्टर निर्माण और कविता प्रतिस्पर्धा सहित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। अभियान के पहले दिन जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप के जिला और ब्लॉक स्तर के लाखों लोगों ने इसमें भागीदारी की। आकांक्षी खंड कार्यक्रम के अंतर्गत आज हरियाणा के भिवानी जिले के बहल कस्बा में संपूर्णता अभियान की शुरूआत की गई। उपमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार ने आकाशवाणी समाचार को इस अभियान के बारे में विस्तार से बताया।
इस अभियान की शुरुआत जनवरी 2023 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी, जिसमें जो ब्लॉक जो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें केपीआई बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन पर हमें काम करना है, जिसमें आपके एजुकेशन से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, पोस्टल से संबंधित और तमाम अन्य विकास से संबंधित मुद्दों की जो है बात की जाएगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि 2025 तक विश्व अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में पहले भारतीय के पहुंचने का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों में 3 ग्रुप कैप्टन और 1 विंग कमांडर को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना गया है। समुद्र के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर डॉ सिंह ने कहा कि भारत के गहरे समुद्र के अभियान में 2025 तक 3 भारतीयों को भेजा जाएगा। केंद्र ने आज राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मानक और नियामक ढांचे के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, अवसंरचना और संस्थागत समर्थन के वित्त पोषण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक 200 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ कार्यान्वित की जाएगी। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और 6 में नई पाठ्यपुस्तकें लाई जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पाठ्यपुस्तकों की तैयारी का कार्य अंतिम चरण में है और कक्षा 3 और 6 की 9 पाठ्यपुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं। शेष 8 पाठ्यपुस्तकें बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। केंद्र ने कई फर्जी और धोखाधड़ी वाले ईमेल के विरुद्ध चेतावनी जारी की है। इन ईमेल को केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, दिल्ली के साइबर अपराध और आर्थिक अपराध इकाई तथा साइबर सेल से भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इनमें लोगों पर बाल और साइबर पोर्नोग्राफी, पीडोफीलिया और यौन प्रदर्शन के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकार के ईमेल पाने वाले लोगों को इसकी सूचना पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। T20 विश्व कप के विजेता क्रिकेट टीम आज सुबह जब वापस लौटी तो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचते ही प्रशंसकों ने विजेता टीम को बधाई दी। विजेता टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिली और अपने अनुभवों को साझा किया। विश्व कप विजेता टीम मुंबई के नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के बीच मुंबई पहुंची। एक रिपोर्ट।
मुंबई के समुद्र की तरह विशाल क्रिकेट प्रशंसकों का जन समुदाय आज मरीन ड्राइव पर उमड़ पड़ा अपने चहेते भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत करने के लिए। भारतीय ध्वजस्थान में इंडिया इंडिया मुंबई का राजा रोहित शर्मा और बूम बूम बुमराह के नारे लगाते ये फैंस बारिश में भी अपने चैंपियंस की एक झलक के लिए डटकर खड़े रहे। खुशी और ऊर्जा से भरपूर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कोच राहुल द्रविड़ सहित सभी खिलाड़ी अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखे। बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी ओपन डेक बस में खिलाड़ियों के साथ थे। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के विमान को मुंबई हवाई अड्डे पर शानदार जल सलामी देकर उनका स्वागत और सत्कार किया गया। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
लंदन में विम्बल्डन टेनिस के पुरुष डबल्स में युकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में उन्होंने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक और अलेक्जेंडर शेवचेंको को हराया। एक अन्य मैच में एन श्रीराम बालाजी और इंग्लैंड के ल्यूक जॉनसन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स टीम में 17 पुरुष और 11 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मौसम विभाग ने 4 से 5 दिनों के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की वरिष्ठ वैज्ञानिक सोमा सेन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि आज दक्षिण गुजरात में बहुत तेज वर्षा का अनुमान है।
दिल्ली में अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आपका अगले 3 दिन चलेगा, उसके बाद बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आज आपका हाईएस्ट रेनफॉल जो रियलाइज हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर और हमारी उम्मीद है कि आगे अगला 2 दिन तक आपका एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सभी में भारी से अति भारी वर्षा जारी रहेगी।
असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों राज्य 29 जून से लगातार वर्षा से प्रभावित हैं। ब्यौरा हमारे असम संवाददाता से।
पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा बचाव और राहत कार्य में तेजी आई है। प्रदेश के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अलग अलग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सभी ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री, पेयजल और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शेयर बाजारों में तेजी पर कहा है कि नियामक प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इसमें हर कोई अपना संतुलन और धैर्य बनाए रखे। मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री चंद्रचूड़ ने आशा जताई कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सावधानी बरतते हुए सफलताओं का जश्न मनाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 63 अंक की बढ़त के साथ 80,050 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 16 अंक की वृद्धि से 24,302 पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओलंपिक के लिए पेरिस जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ विचार विमर्श किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि एथलीट अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत को गौरवान्वित करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद को किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा के लिए संपूर्णता अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस भगदड़ हादसे में सत्संग के 6 आयोजकों को गिरफ्तार किया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का मुंबई आगमन पर जोरदार स्वागत। मरीन ड्राइव पर विजय परेड जारी और विम्बल्डन में पुरुष डबल्स में युकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।